ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयुर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सर्वसा नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सर्वसाहूणम् परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की जिनवाणी माता की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज की ये ग्रंथ की प्रतियां अभी चार हैं तो जिनको रखना हो तो देख सकते हैं इष्टोपदेश एक कार्यवसर कर जो पढ़ने वाले हैं संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं उनके काम की चीज है उसमें हमने शब्दों के अर्थ भी लिखे हुए हैं मंगलाचरण ओम नमः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने एक कल्पसर गौर श्लोक का उच्चारण थोड़ा ध्यान से करिएगा यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने यस्य यस यानी जिनको कृत्स्न कर्मणः अभावे सभी कर्मों का अभाव होने से संपूर्ण कर्म का अभाव होने पर स्वयं स्वभाव आती अपने आप स्वभाव की प्राप्ति होगी बाहर से नहीं हुई अपने भीतर से अपने स्वभाव की प्राप्ति होगी कर्म बाधक बन रहे थे स्वभाव प्रकट होने में तो कर्मों का अभाव होने पर स्वभाव प्रकट हो गया आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं बैठ रही हमारी तो परेड है इसमें जिनको स्वयं अपने स्वभाव की उपलब्धि हुई कब हुई कर्मों का अभाव होने पर कर्म जो थे वो स्वभाव को बाधा पहुंचा रहे थे उनका अभाव होने पर जिनको स्वयं स्वभाव की उपलब्धि हुई ऐसे संज्ञान रूपाय केवल ज्ञान स्वरूपी तस्मै परमात्मा ने उन परमात्मा को नमोस्तु नमस्कार हो। इसका मतलब यह हुआ कि जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा कोई अनादिकाल से नहीं होते, पहले आत्मा होती है, फिर उसका शुद्धिकरण हो जाने पर वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। और अशुद्धि कौन सी है आत्मा में? कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाली अशुद्धि है। तो कृत्स्न कर्मण अभाव है, सब कर्मों का अभाव होने पर यस्य जिनको स्वयं स्वभाव आपती, स्वयं स्वभाव की उपलब्धि हुई है, तस्मै उन संज्ञान रूपाय परमात्मा ने संज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान केवल ज्ञान वो जिनका स्वरूप है या जिनका रूप है ऐसे परमात्मा को नमोस्तु। ये मंगलाचरण है। अब मंगलाचरण में जिसको नमस्कार किया जाता है उसके प्रति अपना जो भावनात्मक झुकाव है वो प्रकट होता है। और फिर झुकाव प्रकट हुआ इसका मतलब ये है कि आप उस रूप को और स्वरूप को पसंद करते हैं, तभी आपका उसके प्रति झुकाव है। तो जिसको अपन पसंद करते हैं उसको कभी ना कभी प्राप्त भी किया जाता है। जैसे किसी को कोई इष्ट भोजन सामग्री पसंद है तो कभी ना कभी वो उस सामग्री को हासिल करता है। इसी प्रकार यहां मंगलाचरण में जिन परमात्मा को नमस्कार किया है उसी परमात्मा पद को नमस्कार करता भी प्राप्त करते हैं। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मतामता योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता स्वरघात द्रव्यादिस्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। पहली पंक्ति में दृष्टांत दिया है उपादान। उपादान शब्द का अर्थ आप जानते होंगे कि जिस वस्तु में कोई कार्य होता है उसको उपादान कहते हैं। जैसे चावल में भात की पर्याय प्रकट हुई तो भात का उपादान कौन होगा? चावल का वो दाना जिससे भात बना। इसी प्रकार आटे से रोटी बनी, रोटी का उपादान आटा हुआ। इसी प्रकार आत्मा से परमात्मा बने तो फिर परमात्मा का उपादान आत्मा। तो योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान का योग होने से इसका मतलब यह हुआ कि उपादान दो प्रकार के होते हैं, योग्य और अयोग्य। वरना यहां पर योग्य शब्द की क्या आवश्यकता थी? योग्य शब्द यहां दिया है, इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे खिचड़ी बना रहे हैं आप तो उसमें सारे दाने नरम नहीं पड़ते, केवल वे दाने खिचड़ी रूप परिणत होकर नरम बन जाते हैं, खाने योग्य बन जाते हैं जिनमें योग्य उपादान होता है। ठीक है। और कुछ ऐसे दाने भी होते हैं, कोरडू मूंग बोलते हैं इसको, टर्रा मूंग भी बोलते हैं बंदेलखंड में, वो ऐसे बर्तन के नीचे रहते हैं और वो खाओ तो ऐसा लगता है कि कंकड़ तो नहीं आ गया, लेकिन फिर पता चल जाता है कि कंकड़ नहीं है, वो दाना ही है मूंग का, वो अयोग्य उपादान है। इसी प्रकार संसार में जीव दो प्रकार के, भव्य और अभव्य। अभव्य जो है वो अयोग्य उपादान वाले हैं, और भव्य में भी जो दूर भव्य है वो वर्तमान में अयोग्य उपादान वाले हैं। समझ में आ रहा? जैसे बोरे के नीचे वाला जो चावल है आपने साफ करके पूरे बोरे को व्यवस्थित कर दिया, उसमें से पूरे चावल का शुद्धिकरण मतलब जो शोधबीन होती है वो कंप्लीट करके फिर उसको किसी एक उसमें रख दिया, पीपे में या कहीं पर, और उसके बाद अब आप रोज भात बनाते हैं, और भात क्या उसके और भी दूसरे आइटम्स बनाते हैं, पुलाव खिचड़ी बहुत सारी चीजें बनती है, डोसा। और फिर इसमें देखिए, दूर भव्य का दृष्टांत देने के लिए हमने ये उदाहरण लिया, जो सबसे नीचे दाने हैं पीपे में उनका नंबर अभी नहीं लगने वाला है, ठीक है, तो वो है तो सीजने योग्य यानी भव्य तो है, लेकिन अभी चूंकि देर है इसलिए अभी उनका जो उपादान है वो इसमें नहीं गिना जाएगा योग्य उपादान। योग्य उपादान उनका है जो अभी उसमें से निकाल करके आपने, और उसमें भी निकालते समय कुछ हाथ से नीचे गिर जाते हैं, 7-8 दाने या फिर 15-20 दाने वापस उसमें पीपे में चले जाते हैं, तो वो भी अभी उनका नंबर नहीं है, उनका टाइम नहीं है, तो जो उसमें गए वो योग्य उपादान है। आगे समझो, तो योग्य उपादान का योग होने से क्या होता है, दृश्यद स्वर्ण का मतलब एक पाषाण है जिसमें सोना है, उसमें से स्वर्ण पर्याय प्रकट हो जाती है। नहीं तो धरती के अंदर ऐसे कितने पाषाण खंड है जिसके अंदर स्वर्ण है, पर अभी उनका नंबर नहीं आया, या फिर कुछ पाषाण ऐसे हैं कि नंबर आने पर भी वो अंध पाषाण की श्रेणी में आते हैं। अंध पाषाण उसको कहते हैं जिसमें सोना तो है लेकिन निकल नहीं सकता। उसी प्रकार ये जो दृष्टांत है इसका दार्ष्टांत अभव्य जीव है। अभव्य जीव अंध पाषाण के समान है कि उसके अंदर आत्मा के जितने गुण भव्य में होते हैं वैसे अभव्य में भी होते हैं, लेकिन प्रकट नहीं हो सकते, ठीक है। और फिर बाकी भव्य जीव ऐसे हैं, दूर भव्य का दृष्टांत क्या है कि जिन पाषाण खंडों में है तो स्वर्ण पाषाण, पर अभी उनको निकाल करके कोई प्रक्रिया चालू नहीं हुई है, जैसे वो पीपे के नीचे वाले चावल के दाने, तो वो भी अभी योग्य नहीं है, आगे चलकर के योग्य होंगे क्योंकि उसके अंदर भव्यत्व है, स्वर्ण पाषाणत्व है। तो योग्य उपादान का योग होने से जिस प्रकार दृश्यद स्वर्णता मता स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण पर्याय मानी जाती है, प्रकट हो जाती है, बस उसी प्रकार आत्मनोपी, उसमें संस्कृत में भी अगर आपकी रुचि हो तो फिर आप उसमें देखते जा सकते हैं साथ में कि हम जो शब्दार्थ कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं। आत्मनोपी आत्मा की भी आत्मता मता, मतलब शुद्ध आत्म पर्याय अर्थात सिद्ध अवस्था मानी जाती है। जैसे योग्य उपादान का योग होने से पाषाण में से स्वर्ण पर्याय निकलती है, वैसे ही द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, द्रव्य आदि क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इसको द्रव्यादि कहते हैं। और कैसे द्रव्यादि, स्वादि सु है आदि में जिनके, सु है आदि में जिनके यानी सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव, इनकी संपत्ति मिलने पर, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। सुद्रव्य यानी मनुष्य पर्याय में पुरुष का शरीर और वज्र ऋषभ नाराज संगनन और कर्म भूमि का जन्म, कर्म भूमि की बात अभी क्षेत्र में आएगी, लेकिन सुद्रव्य का अर्थ ये होता है कि मोक्ष प्राप्त करने योग्य मनुष्य का शरीर। सभी मनुष्य शरीर से मोक्ष नहीं होता, श्वेतांबर आमलाई में माना जाता है कि स्त्री शरीर से भी मुक्ति हो सकती है, लेकिन दिगंबर मत में तो बिल्कुल निषेध है कि स्त्री शरीर में वो संगनन नहीं होता जिससे शुक्ल ध्यान हो, मुक्ति कहां से हो जाएगी बिना शुक्ल ध्यान के। तो वैसा शरीर प्राप्त होना मनुष्य पर्याय में ये सुद्रव्य है, माने अपना द्रव्य तो जीव द्रव्य है, लेकिन जीव द्रव्य को मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय में और क्या चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए जो इस मनुष्य पर्याय में मुक्ति के लिए आवश्यक है, तो वो सुद्रव्य हो गया। फिर सुक्षेत्र कौन सा है, कर्म भूमि, और कर्म भूमि में भी म्लेच्छ खंड और आर्य खंड दोनों प्रकार के खंड होते हैं, फिर विजयार्ध पर्वत भी होता है, तो यहां आर्य खंड आवश्यक है। यद्यपि अपवाद रूप में जब चक्रवर्तियों का काल होता है तब 6 खंड जीतते समय चक्रवर्ती अपने साथ कुछ म्लेच्छ राजाओं को भी ले आते हैं, यहां आर्य खंड में वो जा सकते हैं मोक्ष, अगर दीक्षा आदि ले ले तो, लेकिन जो वहां रह गए उनका तो कुछ नहीं है। तो आर्यखंड में जन्म होना भी बहुत आवश्यक है कर्मभूमि में। तो ये सुख क्षेत्र हो गया। फिर तीसरे नंबर पर क्या है? सुकाल। अब सुकाल कौन सा है? चौथा काल एकदम स्थूल रूप से अपन बोलते हैं, वास्तव में देखा जाए तो अवसर्पिणी की अपेक्षा से उसको चौथा काल कहा जा सकता है। पर मुक्ति जो होती है, मुक्ति अवसर्पिणी के तृतीय काल के अंत अंत में भी होती है। जैसे आदिनाथ भगवान कब मोक्ष गए? तीसरे काल को समाप्त होने में 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी थे तब। तो इसका मतलब यह हुआ कि तीसरे काल में मोक्ष हो सकता है। फिर चौथे काल में जिसका जन्म हुआ है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, भले पंचम काल में मोक्ष हो जाए, लेकिन जन्म उसका चौथे काल में आवश्यक है। एक मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, तो उसमें से एक बच्चा जो था वो कुछ समय पहले हुआ और एक बच्चा कुछ समय बाद हुआ। जो बाद में हुआ तो बाद में जिसका जन्म हुआ उस समय पंचम काल चालू हो गया, तो चौथे काल में जिसका जन्म हुआ था वो मोक्ष चला जाएगा। पंचम काल में जन्म हुए की मुक्ति नहीं होती। अब ये जन्म की अपेक्षा से बता दिया हमने, एक ऐसे ही दृष्टांत है समझने के हिसाब से। तो काल जो है तृतीय काल के अंत में जन्म हुआ या चतुर्थ काल में अवसर्पिणी के जिसका जन्म हुआ है वो सुकाल कहलाता है, मोक्ष प्राप्ति के योग्य। और वैसे देखा जाए तो सुषमा दुष्मा और दुष्मा सुषमा इन दो कालों में जन्म लेने वाले ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सुषमा दुष्मा जो है वो तीसरा काल अवसर्पिणी का, उसके अंत में जन्म लेने वाले, और चतुर्थ काल में तो पूरे चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या? सुकाल हो गया। और आखिरी क्या था? सुभाव। अब भाव का अर्थ क्या होता है? उस जीव का परिणाम, उसका उपयोग जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। तो वो कौन सा भाव मोक्ष प्राप्ति में सहायक है? तो परे मोक्ष हेतु धर्म ध्यान रूप भाव और बोलो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। घबराते क्यों? परे मोक्ष हेतु बस दो ही ध्यान मोक्ष के हेतु है, तो अब आर्त्र रौद्र ध्यान का तो नाम आपको लेना नहीं है, तो बचे धर्म और शुक्ल ध्यान। तो ये जो भाव है ये भी मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। धर्म ध्यान साक्षात कारण नहीं है मोक्ष का, वो क्रम से धर्म ध्यान होगा पहले, फिर शुक्ल ध्यान, फिर मोक्ष। तो इसलिए इनकी संपत्ति मिलने पर आत्मनोपी आत्मता मता, आत्मा को भी आत्मता यानी परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। अब इसमें फिर किसी के मन में शंका उत्पन्न होती है कि ठीक है, आपने ये 4 बातें बतला दी, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव वाली, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जितने लोग मोक्ष पुरुषार्थ करें सबको उसी जन्म में मोक्ष मिल जाए? ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है। तो फिर मोक्ष अगर न मिला और व्रत ले लिए हमने तो क्या सार निकला उन्हें? देखो शंकाकार बहुत दिमाग वाले लोग होते हैं कि अगर हमने व्रत ले लिए और मोक्ष नहीं मिला तो व्रत तो बेकार हो गया ना। आई समझ में शंका? तो उसका जवाब आचार्य महाराज है। आचार्य महाराज उनसे भी बड़े उस्ताद हैं। जितने लोग जितने प्रकार के तर्क कुतर्क करने वाले हैं उनसे ज्यादा विवेकी और ज्ञानवान आचार्य परमेष्ठी है। तो आचार्य महाराज देखिए क्या समाधान दे रहे हैं। वरम व्रतैहि पदं दैवम् न व्रतैर् वत नारकम् छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। वरम व्रतैः पदं दैवम् न व्रतैर्वत नारकम् छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। व्रतैः व्रतों के द्वारा अगर किसी साधक को मुक्ति न प्राप्त हो तो क्या प्राप्त होगा? दैवम पदम, देवों का पद यानी स्थान प्राप्त होगा, माने स्वर्ग प्राप्त होगा, वैमानिक देवों का विमान प्राप्त होगा। तो वो व्रतों के द्वारा अगर मुक्ति नहीं मिलती तो देवों के विमान को प्राप्त करना वरम कुछ किसी दृष्टि से उचित है, सही है। ना व्रतैर वत नारकम, और अव्रत यानी पांच पाप, व्रत किसको कहते हैं? पापों को छोड़ दो तो व्रत कहलाते हैं, और पापों को न छोड़ो तो अव्रत कहलाते हैं। तो पांच पाप, पांच पापों द्वारा नारकम पदम वत, पांच पाप कमाकर, पांच पाप करके नारकम पदम, नरक में जाकर के नारक बन गए, वो वत माने खेदकारी है। और व्रतों के साथ देव पर्याय प्राप्त हो जाए तो वो उससे बेहतर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर व्रत धारण करने पर मुक्ति नहीं भी मिली तो उन व्रतों से देव पर्याय प्राप्त कर लेना नरक जाने से बहुत अच्छा है, ठीक है। और दृष्टांत क्या दिया? छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपालय तोर महान। तीन मित्र शिखर जी की यात्रा के लिए निकले और गर्मी का समय है, सीढ़ियां भी तपी हुई है और फिर ऊपर से भी धूप पड़ रही है। तो अब क्या होता है कि एक जो है थोड़ा कमजोर शरीर वाला पिछड़ जाता है और बाकी जो दो लोग हैं वो आगे आपस में चर्चा करते करते बोलते, अरे यार वो तो पीछे रह गया, चलो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तो इंतजार करने की बात जब करते हैं दोनों, तो उनमें से एक तो किसी वृक्ष की छांव में बैठ जाता है और एक वहीं सीढ़ी पर धूप में खड़ा रहता है। तो दोनों प्रतिपालय तो द्विवचन दिया, दोनों इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कहां कर रहे हैं? छाया तपस्थयो, एक छाया में प्रतीक्षा कर रहा है और दूसरा आतप में यानी घाम में। तो इनमें महान भेद है, महान भेद होता है। प्रतीक्षा दोनों कर रहे हैं, दोनों को उस तीसरे की प्रतीक्षा है, लेकिन एक छांव में प्रतीक्षा कर रहा है और दूसरा धूप में। दोनों में कितना फर्क है? उसी प्रकार सब जीवों को मोक्ष जाना है, लेकिन मोक्ष जाने के पहले एक नरकों की घाम सहन करता है और दूसरा स्वर्गों की छांव। तो कितना फर्क हो गया दोनों में। इसलिए आचार्य कहते हैं कि व्रतों को धारण करके स्वर्ग में इंतजार कर लो मोक्ष प्राप्त करने का तो अच्छा है, और पाप कमाकर नरक जाओगे तो वहां पर चैन की सांस नहीं मिलने वाली। इसलिए व्रती बनने की इस काव्य में प्रेरणा है। फिर इसके बाद आगे कहते हैं, यत्र भावः शिवन्दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्यूतिम् क्रोशार्थे किंस सीदति। यत्र भावः शिवन्दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्यूतिम् क्रोशार्थे किंस सीदति। यत्र भावः, यत्र माने जिसके प्रति, भावः अपना भाव लग जाता है, और उसके प्रति लगा हुआ भाव शिवं दत्ते मोक्ष को प्रदान करता है। अब वो किसके प्रति लगा हुआ भाव मोक्ष को प्रदान करता है? अपने आत्म स्वरूप के। कषायों में लगा हुआ भाव संसार को प्रदान करता है, और अपने आत्म स्वभाव में लगा हुआ भाव, रत्नत्रय में लगा हुआ भाव मोक्ष को प्रदान करता है। तो जो मोक्ष प्रदान कर सकता है वह भाव द्यौ की दूरवर्तिनी, उसके लिए स्वर्ग कितनी दूर है, यानी जिस भाव से मुक्ति प्राप्त हो जाती है उसके लिए स्वर्ग प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है। ये ठीक है कि हमने अभी कहा कि व्रतों से अगर मुक्ति न मिली तो स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन स्वर्ग मिलेगा, ये सुन करके लुभा मत जाना, यानी मोक्ष का लक्ष्य छोड़ मत बैठना। क्या कह रहे हैं? यानी मुक्ति की जो भावना है उसको ठंडे बस्ते में मत डाल देना स्वर्ग की बात सुन करके, क्योंकि आत्मा में जो ध्यान लगाया जाता है उस ध्यान में अपार शक्ति होती है। जैसे शारीरिक रोगों का निवारण करने की शक्ति अपनी अलग है, जैसा ध्यान करोगे, जिसका ध्यान करोगे, वो सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति आत्मा के पास होती है। अभी एक रेडियो अमेरिका पर बिल हैरिस का इंटरव्यू आया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग हमने सुनी, तो उसमें उनसे एक प्रश्न पूछा, बहुत मजेदार, ध्यान से सुनने योग्य बात है। उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप जो कुछ भी सिखलाते हैं, जो भी आपकी पद्धतियां हैं, क्योंकि बहुत सारी पद्धतियां हैं, लोग ध्यान की अलग अलग प्रकार की विधियों से लोगों का उपचार करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, कहीं विपश्यना पद्धति है, कहीं पर वो डिवाइन लाइफ सोसाइटी वालों का एक अलग कुंडलिनी जागरण ध्यान चलता है, फिर ये प्राणायाम के साथ रामदेव स्वामी का भी एक चलता है, मुंगेर वालों का अलग चलता है, फिर अरविंदो का जो आश्रम है पौंडीचेरी में, वहां पर भी एक ध्यान का केंद्र है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, इतना बड़ा गोला है स्फटिक जैसा कांच का, तो उसको घेर करके सबको बैठा देते हैं, और उसके बाद उसको भी जो बैठने का कक्ष है उसको भी इस तरीके से बनाया गया है जमीन से खंभे लगा करके कि उसका कहीं संपर्क ना हो, खंभे जो लगे हैं उन खंभों से भी कुछ अलग हट करके बीच में ऐसे वो कक्ष बना हुआ है, वहां पर ध्यान करते हैं, ध्यान का केंद्र है वो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रयास लोग करते हैं। बिल हैरिस से जब पूछा, बिल हैरिस की जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो तकनीक है, अभी विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, उसके आगे कोई तकनीक नहीं है। वो दोनों कानों में अलग अलग आवाजें सुनाते हैं और उन आवाजों को सुनने वाला अपने आप एक वर्ष में जो अपने नकारात्मक विचार, जैसे क्रोध है या उदासी है या चिंता है, उसको करना अपने आप छोड़ देता है। और उनके प्रोग्राम में ऐसा नियम है कि अगर एक वर्ष में आपको लाभ नहीं हुआ तो हम आपकी पूरी फीस वापस कर देंगे, आपने जितना खर्च किया है इसके लिए वो सब हम लौटा देंगे, ऐसा उनका एक रूल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीने हो जाते हैं, 8 महीने हो जाते हैं, 10 महीने हो जाते हैं, लाभ नहीं होता, तो वो लोग फोन लगाते हैं उनको, बोले कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बोले कि चिंता मत करो, अभी 1 साल का जो समय हमने दिया है वो पूरा हो जाने दो। और फिर 1 साल पूरा होने के पहले उनके फिर दोबारा फोन आते हैं कि अरे मुझे पता ही नहीं चला, एकदम फायदे होने लग गए। तो उनसे इंटरव्यू में पूछा कि क्या आपके प्रोग्राम में ऐसी कोई विधि है कि जो अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तब उनने जवाब दिया कि ऐसी विधि की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म से मनोकामना पूर्ण करने में उस्ताद होता है, हर मनुष्य के पास वो शक्ति होती है कि वो जो चाहे वो हो सकता है उसके जीवन में। तो फिर इसको समझ में नहीं आया इंटरव्यू लेने वाले को कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, लोग तो छटपटाते रहते हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए, कितनी उठापटक करते हैं और दुनिया भर के चक्कर काटते हैं। तब फिर उसने समाधान बताया कि जैसे मान लो कई विचार आपके मन में ऐसे आते हैं कि हमारे जीवन में कोई अनिष्ट न हो जाए, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, अगर इतना आपने समझ लिया तो हो सकता है आपका जीवन उज्जवल हो जाए। बहुत सरल तरीके से उन्होंने समझा, बोले कि जैसे मान लो किसी के जीवन में कोई घटना हुई और वो घटना उसको बहुत ही अनिष्ट थी, तो अनिष्ट घट, जैसे मान लो कभी कभी कुछ लोग जल जाते हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग जलते हैं वो एकाध बार और भी जलते हैं, या फिर जिनका एक्सीडेंट हुआ एक बार उनका एकाध बार फिर से एक्सीडेंट होता है, या कभी कोई काम बनाने के लिए वो गया किसी से मिलने के लिए और वहां काम नहीं बना तो दूसरी जगह जाता है, तो कभी काम बन जाता है और फिर और कहीं जाता है, फिर से कभी उसको वैसी ठोकर प्राप्त करनी पड़ती। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नेगेटिव अनुभव अपने जीवन में सिर्फ एक बार नहीं होता, 2-3 बार वैसा अनुभव अपने जीवन में होता है। क्यों होता है? उसका कारण बिल हैरिस ने बताया कि मनुष्य जहां अपना ध्यान लगाता है वो चीज उसके जीवन में साकार होती है। ये अकाट्य नियम है। अगर आपने ये ध्यान लगाया कि वो चीज नहीं होनी चाहिए तो आपकी शक्ति को ये नहीं मालूम कि आप ध्यान क्यों लगा रहे हैं, उसको बुलाने के लिए लगा रहे हैं या भगाने के लिए। आपकी शक्ति ये जानती है कि आपने जहां ध्यान लगाया है वो चीज आपके जीवन में ले आए। ये इष्टोपदेश में आगे भी आने वाला एक श्लोक, 20वां नंबर का जो श्लोक है उसमें यही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं और आज उन्होंने रिसर्च करके वही बात निकाली है। यानी जैन आगम की पुरानी बातें आज रिसर्च करने के बाद भी सत्य प्रमाणित हो रही है। इसके कहने का मतलब यह है, जैसे उदाहरण के लिए आप गिरनार की यात्रा के लिए जा रहे हैं और यहां से ये सोच करके जा रहे हैं कि कहीं बारिश ना आ जाए, या फिर ये सोच करके जा रहे हैं कि पता नहीं ये यात्रा सफल होगी कि नहीं होगी, तो फिर निश्चित ही वहां जाने के बाद आपको कुछ ऐसा अनुभव, एकाध अनुभव तो अवश्य होगा कि जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपने यहां से ध्यान लगा करके रखा था। और जिस पर अपना ध्यान लग जाता है अपनी शक्ति वो चीज अपने सामने हाजिर कर देती है। ये नियम। और इसी प्रकार कोई एडमिशन लेने जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि तीन चार चक्कर काटने पड़े, उसको काटने ही पड़ते हैं तीन चार चक्कर। पर कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि आप सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए पर उस दिन वैसा नहीं भी होता, ऐसा भी आपने देखा होगा। तो उस समय कौन सी शक्ति काम करती है? तो उस समय आप या तो नमोकार मंत्र पढ़ करके जाते हैं या फिर कोई आशीर्वाद लेकर के जाते हैं या फिर देव दर्शन करके जाते हैं, तो वो शक्ति आपके साथ में काम कर जाती है। तो बिल हैरिस का केवल एक संदेश है सबके लिए कि जो चीज आप नहीं चाहते उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो, वो चीज कभी नहीं आएगी आपके जीवन में। आप सोचते हैं तो आपका विचार उसमें एकाग्र होता है और बस वो ध्यान लग जाता है उसमें, और ध्यान से सब कुछ सच हो जाता है। आप गलत चीज का ध्यान करोगे तो वो सच हो जाएगी, और अगर आप सही चीज का ध्यान करोगे तो वो सच हो जाएगी। तो सिर्फ एक चीज अपने जीवन में अपने को सीखना है कि हमेशा अपन होश में रहें। होश में रहने का मतलब कि विचार कहां जा रहे हैं इसका होश अपने को होना चाहिए, क्योंकि विचार ऐसी जगह चले जाए जो चीज आप नहीं चाह रहे तो फिर बस वो ध्यान की शक्ति वहां काम करेगी। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, और फिर वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज आपको जो चीज यहां बतलाई है वो ये है कि अपना ही भाव मोक्ष प्रदान करता है, तो स्वर्ग कौन सी बड़ी चीज है। दृष्टांत ये दिया कि एक हट्टा कट्टा आदमी है, वो अपनी पीठ पर वजन लेकर गव्युतिम नयति, दो कोस तक चला जाता है, इतना तगड़ा है वो। तो किम क्रोशार्ध से सी देती, क्या आधे कोस में वो हाफने लग जाएगा? जो दो कोस तक बड़े आराम से वजन लेकर के चला जाता है, इतना शक्तिशाली है, वो आधे कोस में थकान का अनुभव नहीं कर सकता। तो जिस भाव से मुक्ति प्राप्त हो सकती है उससे सांसारिक वस्तुएं प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है। आगे समझ में। इसलिए स्वर्ग को लक्ष्य मत बनाना। व्रत धारण करते हो तो मुक्ति का ही लक्ष्य रखना। अब स्वर्ग प्राप्त होने के बाद वहां क्या मिलता है इसके बारे में आगे के श्लोक में बताया गया, उसको अपन आगे देखेंगे। लेकिन मूल जो बात थी, समझने की बात थी, वो ये थी कि जो चीज आप नहीं चाहते उसका कभी ध्यान मत करो। तो ये दावा है उनका, बिल हैरिस का, कि कभी वो घटना आपके जीवन में नहीं घटेगी। और आप जो चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, और फिर जैसे चाहते हैं आप किसी चीज को तो उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए इतनी सावधानी रखना कि कहीं इसको प्राप्त करने में देर हो गई तो देर हो गई, ये पक्की बात है। और कहीं इसको प्राप्त करने में कोई ऐसा विघ्न उपस्थित हो गया कि न प्राप्त हुई तो वही होगा जिसका आपने ध्यान किया है। माने कहने का तात्पर्य यह हो गया कि हर इंसान के पास जो ध्यान शक्ति होती है वो ध्यान शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जो जिसका भी ध्यान लगाओ वो चीज आपके सामने आ जाएगी। बस यात्रा करते समय जिसके मन में ये भय होता है कि एक्सीडेंट में बहुत बुरे हाल होते हैं, एक्सीडेंट में उसके तो बुरे ही हाल होते हैं। और इसका एक उदाहरण है कि बद्रीनाथ में अभी कुछ वर्षों पूर्व एक बच्चों की ट्रिप जा रही थी, तो वो सारे बच्चे उस बस में सवार थे और मजे से वो अपने कुछ गाते हुए चले जा रहे थे, टिफिन भी उनके हाथों में थे। तो वो बस जब वहां से जा रही थी ऊपर, तो बहुत गहरी खाई आती है आजू बाजू में, वो कहीं ऐसी स्थिति बन गई कि वो ड्राइवर का जो कंट्रोल था गाड़ी के ऊपर वो मिस हो गया और वो बस ऐसे ऊपर जा रही थी। आपने कई बार देखा हो कुछ घाटियां ऐसी आती है कि नीचे वाला जो रोड है वो रोड वही है, लेकिन उससे ऐसे ऊपर देखने से एक बस जाती हुई दिखती है, एक अलग रोड दिखाई देता घाट के ऊपर। तो वो बस ऐसे गिरी नीचे और ऐसे नीचे आ गई बिल्कुल नीचे वाले रोड पर, और पूरी बस पूरे चक्के चारों उसके जितने चक्के थे सब ऊपर की तरफ थे और ऐसे बस उल्टी थी। ड्राइवर ने तो छलांग मार करके कहीं वृक्षों की डाल या कहीं से कुछ कर लिया उसने, लेकिन वो बच्चे जो थे वो अंदर बस में रह गए। पर उन बच्चों में से एक बच्चे के अंदर भी ऐसा विचार नहीं था कि हमारा कुछ अनिष्ट हो रहा है। तो जब बस नीचे गिरी तो बस ज्यादा डैमेज नहीं हुई, ज्यादा बस को नुकसान नहीं हुआ, और वो बच्चे देखते हैं कि ये क्या हो गया, उल्टा हो गया कुछ, गाड़ी उल्टी हो गई। तो वो खिड़की के बाहर देख रहे थे, ये सत्य घटना है। और फिर उनने थोड़ी देर ऐसे देखा देखा देखा, क्योंकि कोई नई घटना घटती है तो बच्चे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, सहम जाते हैं। उनने देखा कि ये क्या हुआ, ड्राइवर अंकल कहां चले गए। तो अब ड्राइवर अंकल तो पता नहीं किसी पेड़ की डाल में लटके हुए, लेकिन वो बच्चे जो थे फिर टिफिन ऐसे झटके में क्या हुआ कि इधर उधर चले गए। तो वो सारे टिफिन बॉक्स उनने उठाए और फिर खोल करके उनने फिर खाना चालू कर दिया और गाना चालू कर दिया। खरोंच तक नहीं आई एक भी बच्चे को, गाड़ी उल्टी और फिर वो जो रूफ रहता ना बस का, उस वो अब नीचे हो गया, तो उसमें बैठ करके वो टिफिन खा रहा। ऐसी घटना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपना ध्यान जो भी अनिष्ट है उस पर न लगाकर जो इष्ट है उसी पर लगाना चाहिए। आप देखिएगा उससे अपना जीवन कितना बदल जाता है, कितना सुधर जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा के समय हम बीमार पड़ जाएं। कहीं ऐसा ना हो इसको आप दिमाग से निकाल करके एक बार, अभी अगली बार जो होली आ जाए उसके पहले ही, अभी दिवाली में ही उसका फटाका फोड़ने के बदले इस विचार को ही भस्म कर डालो। क्योंकि फटाका फोड़ने से तो कई बार दुर्घटनाएं भी होती है, लेकिन ये जो विचार है इसको अगर आप समाप्त कर दो तो फिर आपका जीवन सब अनिष्टों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अपन बेहोश हो जाते हैं, टेलीविजन देखते समय एकदम ऐसे कोई ऐसा सीन आ गया और फिर एकदम अपन घबरा जाते हैं, कहीं ऐसी घटना मेरे जीवन में ना हो जाए। अब वो मेरे साथ क्यों जोड़ रहे हो आप, वहां तो सिर्फ एक शो दिखाया जा रहा है, एक ड्रामा है। आप मेरे साथ जोड़ने से क्या होता है कि फिर वो आपका ध्यान, आपकी शक्तियां फिर वो काम करती। नरक क्यों जाता है जीव दुर्ध्यान करके, देवगति को क्यों प्राप्त होता है शुभ ध्यान करके, और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है शुक्ल ध्यान करके। तो फिर विवेकी मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आगे चर्चा स्वयं करेंगे।